आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं वो विषय है हिंदी, और हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है चंद्र गहना से लौटती वीर। जी हाँ, सुनने में ही बहुत अच्छी सी एक कविता लग रही है, कहानी लग रही है ये, कि चंद्र गहना से लौटती वीर। तो हम अपने एक्सपर्ट से चाहेंगे, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मॉडल डॉक्टर मोनिका कादियान जी, एकेडमिक ऑफिसर NIUS से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
जी धन्यवाद।
तो मैम, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है चंद्र गहना से लौटती वीर, तो मैं चाहूंगी चर्चा को शुरू कीजिए।
जी, शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जैसा कि बताया भी गया है आपको कि आज हम बात करेंगे अपने 8वें पाठ पर, जो है चंद्र गहना से लौटती बेर। ये एक कविता है और आप में से बहुत लोगों ने इस कविता को पढ़ा भी होगा और इसका आनंद भी लिया होगा, और शायद आप उत्सुक भी होंगे इस बारे में कि जब हम इस कविता पर चर्चा करेंगे तो इसमें क्या क्या बातें और जोड़ेंगे, और जिससे आपको अपनी पढ़ाई में सुविधा तो होगी ही, आपको एक नए नज़रिए से इस कविता को समझने का, परखने का, इसका विश्लेषण करने का आपको मौका भी मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, इस चर्चा को हम शुरू करें, हम इससे पहले आपसे एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी मौके पर आपने गांव को दूर से देखा होगा, या आप में से कुछ लोग या बहुत लोग गांव से संबंधित होंगे, तो आप लोगों को तो और अधिक इस बारे में सुविधा होगी। और आपने गांव के जो दृश्य हैं उनका आनंद आपने ज़रूर लिया होगा। सुबह सुबह ठंडी ठंडी चलती हुई वो हवा और दूर तक फैली हुई हरियाली, इतना खूबसूरत दृश्य जो मन को भा जाता है, और ऐसा लगता है कि यही जो दृश्य है ये इतना अनोखा है कि शायद अब उस समय हमारी आँखों को इतना अधिक भाता है कि ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर प्रकृति का ये जो दृश्य है हम इसी का आनंद लें। तो मेरा ये संकेत आपके लिए इसलिए भी था कि हमारी जो कविता है वो इसी तरह के दृश्य को बहुत ही काव्यमय ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। केदारनाथ अग्रवाल जी की ये कविता है और इसमें गांव के खूबसूरत लहलहाते हरे भरे खेत हैं, उसमें तालाब भी हैं, अगर रात के दृश्य देखें तो चमकती चांदनी भी है, पक्षियों का कलरव भी है, इस तरह के प्रकृति के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं, और इन दृश्यों को बहुत ही कह सकते हैं कि कलात्मक ढंग से कविता के रूप में हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। तो इससे आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि हमारे इस पाठ में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके उद्देश्य यही है कि आप गांव के जो प्राकृतिक दृश्य हैं आप उनके बारे में बता सकेंगे, उनके बारे में आप कल्पना भी कर सकेंगे। ग्रामीण परिवेश में, गांव में शादी ब्याह का जो माहौल होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह का वातावरण रहता है, इसके बारे में भी आप टिप्पणी कर सकेंगे। और प्रकृति चित्रण के माध्यम से समाज में अलग अलग लोग किस किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस बारे में भी आप उल्लेख कर सकेंगे। और इस कविता में जो मुख्य स्थल आए हैं, जो मुख्य अंश हैं, आप उनकी व्याख्या भी कर सकेंगे, और इस कविता का जो भाषागत जो सौंदर्य है उसका भी आप वर्णन कर सकेंगे, उसका आप विश्लेषण कर सकेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस कविता का जो भावगत सौंदर्य है वो क्या है, इसका कलागत सौंदर्य क्या है, तो आप उसे भी आप उसका उल्लेख कर सकेंगे। तो ये कविता सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम अंश दर अंश हम कुछ कुछ अंश लेते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार पूरी कविता हम एक सिरे से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एक पूरा एक संपूर्ण चित्र आपके सामने आ जाएगा। बस इसमें आपको अपनी कल्पना का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शहर में रह रहे हैं, जिन्होंने शायद कभी बस से जाते हुए कभी ट्रेन से जाते हुए दूर गाँव के सिर्फ दृश्य देखे होंगे, गाँव को दूर से निहारा होगा, लेकिन वहाँ किस तरह का माहौल होता है इस सब का अनुभव शायद आप कुछ लोगों को नहीं होगा। तो आपको अपनी कल्पना का भी प्रयोग इसमें करते जाना है। अब यहाँ पर जो शुरू हो रही है हमारी कविता कुछ इस तरह से है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग, अंचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीले नीचे गले के डालता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आपने ये कविता सुनी और इस कविता को सुनकर आपने एक अनुमान तो अवश्य लगाया होगा कि प्रकृति का किस तरह से यहाँ चित्रण किया गया है। हमारे जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने इस कविता को रचा है और उन्होंने किसी चंद्रगहना नामक स्थान की यात्रा की है, वहाँ से वो लौट रहे हैं और लौटते हुए सुनसान जो खेत हैं जहाँ पर उस समय कोई जन नहीं है, वो निर्जन खेत हैं, उसमें प्रकृति किस तरह से खेल कर रही है, किस तरह की उमंगें प्रकृति में दिखाई दे रही हैं, इसको आधार बनाकर, उन दृश्यों को आधार बनाकर यहाँ ये कविता लिखी गई है। तो यहाँ आप अनुमान लगाइए, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है और वहाँ बैठा बैठा वह खेत और उसके जो आसपास के दृश्य हैं उन्हें निहार रहा है। دور تک پھیلے ہوئے کھیت ہیں، ہریالی ہے، اور اس سارے جو یہ جو پرکرتی ہے اس کا جو سوندر ہے، اس سوندر نے ہی اس ویکتی کو کویتا لکھنے پر اتساہت کیا ہے. تو سب سے پہلے جو دھیان ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ چنے کی طرف جاتا ہے. یہ جو چنا ہے، اس پودے کا جو آکار ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، پتلا یہ پودا ہوتا ہے، اور اس چنے میں گلابی رنگ کے پھول آتے ہیں. تو یہاں کوی کس طرح سے چنے کے پودے کا چترن کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چنے میں گلابی رنگ کے پھول آ گئے ہیں، اور یہ چھوٹا سا، یہ چھوٹے سے قد کا جو چنا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے اپنے سر پر گلابی پگڑی، گلابی پاگ باندھی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک دولہا سجا سنورا کھڑا ہوتا ہے. تو عموماً جو پگڑیاں ہیں وہ گلابی رنگ کی یا پیلی رنگ کی یا اس طرح کے نارنگی رنگ کی ہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو چنا ہے، جس طرح سے وہ گلابی پھولوں سے لدا ہوا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے مانو ایک چھوٹے سے قد کا دولہا جو ہے وہ گلابی رنگ کی پاگ باندھے، پگڑی باندھے ہوئے سجا ہوا کھڑا ہے. اور ایسے میں جہاں پر چنے کا پودا ہے وہاں پر السی کے کھیت بھی ہیں. تو وہاں السی کا جو پودا ہے وہ بہت ہی لچیلا ہے، نازک ہے. ہوا چل رہی ہے تو ہوا میں وہ پودا دھیرے دھیرے ہل ڈل بھی رہا ہے. تو یہاں پر السی کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ السی ہٹھیلی بھی ہے اور دیہ کی بھی پتلی ہے، اور اس کی جو کمر ہے وہ لچیلی ہے. تو پتلی ہونے کے کارن جب ہوا چلے گی تو وہ ہلے گی، اور کبھی کبھی وہ تن کر، جب ہوا نہیں ہوگی تو وہ تن کر کھڑی بھی ہو جائے گی. تو اس کے تن کر کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو السی ہے وہ ہٹھیلی ہے. تو اس طرح سے اس کے جو سر پر کچھ کہہ سکتے ہیں کلیاں جو ہیں اس کی، جن میں بیج بنتا ہے، وہ نیلے رنگ کی اس طرح سے دکھ رہی ہے. تو کوی اس کلپنا کر رہا ہے کہ یہ جو دبلی پتلی سی لڑکی ہے، جو السی ہے، وہ مچل بھی رہی ہے، وہ ہٹ بھی کر رہی ہے، وہ ضد بھی کر رہی ہے، اور وہ اس طرح سے مان لو کہ وہ اکسا رہی ہے کہ جو مجھے چھو لے گا میں اپنا دل اس کو دے دوں گی، اس سے مجھے سنیہ ہو جائے گا، میں اسی کی ہو جاؤں گی. تو اس طرح سے ہمارا جو کوی ہے وہ اس پرکرتی کا، اس آس پاس جو اس کے پریویش ہے، گرامین پریویش ہے، اس کا چترن وہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سرسوں کی نہ پوچھو. یعنی ابھی تک تو بات کی انہوں نے چنے کی اور السی کی، بتایا کہ وہ کس طرح سے سجے ہوئے ہیں، وہ السی کس طرح سے بالکل مان کر رہی ہے، ہٹ کر رہی ہے، اور اس سے بھی کچھ سر اوپر ہے ہماری سرسوں. سرسوں بالکل نرالی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سرسوں کی نہ پوچھو کیونکہ وہ اب سیانی ہو گئی ہے، وہ اب بڑی ہو گئی ہے. سیانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کشوراوستھا میں پرویش کرتے ہیں بچے، تو تب ہم کہتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے وہ سیانے ہو رہے ہیں، وہ بڑے ہو رہے ہیں، یوون کے مارگ پر انہوں نے پیر رکھ دیا ہے. اور دوسرے سندرب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ چتر ہو گئے ہیں، ان میں اب سمجھ زیادہ ہو گئی ہے. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ سرسوں سیانی ہو گئی ہے، تو یہاں پر کہا ہے کہ جیسے ایک یوتی جو ہے وہ یوا ہو گئی ہے، وہ اس اپنی عمر کے چرم پر آ گئی ہے، اس میں بہت ادھک خوبصورتی، بہت ادھک وہ خوبصورت ہو گئی ہے، اور اس سمے ہے کہ اس کا وواہ ہو. تو اس لیے اس نے اپنے ہاتھ پیلے کر لیے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو سرسوں ہے اس کا جو رنگ ہے کس طرح کا ہوتا ہے, بالکل چٹک پیلے رنگ کی سرسوں ہوتی ہے. اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سرسوں کے کھیت اوشیہ دیکھے ہوں گے. اگر آپ نے واسطو میں نہیں دیکھے ہوں گے تو آپ نے فلموں میں بھی ضرور دیکھے ہوں گے. آپ کبھی کوئی فلم دیکھتے ہیں تو آپ ان باتوں پر بھی ضرور غور کیجیے, ان اس طرح کے پریویش کا بھی اوشیہ اولوکن کیجیے, کیونکہ اس سے بھی آپ کے گیان میں وردھی ہوتی ہے. تو جو ہماری سرسوں ہیں وہ پیلے رنگ کی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جو کہا ہے کہ ہاتھ پیلے کر لیے ہیں, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہیں, اس کی شادی کر دی گئی ہے, تو اسی محاورے کا یہاں پر پریوگ کیا گیا کہ اس کا جو ہے وہ وواہ ہو گیا ہے. تو اس پورے درشے میں کوی کو ایسا آبھاس ہو رہا ہے مان لو کہ ایک وواہ کا درشے ہے, لیکن یہاں پر وواہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو سیانی ہو گئی ہے, اور سیانی کون ہو گئی ہے؟ سرسوں. سرسوں سیانی ہو گئی ہے. تو یہاں کوی کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری جو سرسوں ہیں وہ سب سے سیانی ہو گئی ہے, ہاتھ پیلے کر لیے ہیں, اور وہ بیاہ منڈپ میں وہ پدھاری ہے, اور وہاں کس طرح سے پھاگ گاتا ماس پھاگن آ گیا ہے آج جیسے, یعنی وواہ کے سمے پر جس طرح سے گانا بجانا اور بہت سارے وادیہ یَنتروں کی دھونی آپ کو سنائی دیتی ہے, تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جو سرسوں پھولنے کا, سرسوں کے مہکنے کا جو سمے ہے وہ ہے جب ہولی کے آس پاس کا سمے ہوتا ہے, جب پھاگ یہاں پر کہا گیا ہے, پھاگ یعنی ہولی کا جو تیوہار ہے, اس سمے کا جو ماس ہے پھاگن ماس, جو ہمارے دیسی بھاشا میں کہا جاتا ہے کہ پھاگن ماس ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اس سمے ہولی کے سمے جو گائے جانے والے جو گیت ہیں وہ وہاں پر اس طرح کا, ان گیتوں کا جیسے ماحول ہے, جیسے یہ ریتو ہی سنگیت میں واتاورن اتپن کر رہی ہے. تو یہی کوی کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں میں سویمور ہو رہا ہے, پرکرتی کا انوراگ انچل ہل رہا ہے. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور پرکرتی جو ہے وہ ایک ماں کے روپ میں یہاں پر درشیمان ہے. تو جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو ماں جو ہے اپنے پورے سنیہ, پوری ممتا, پورے انوراگ کے ساتھ وہاں پر موجود ہے, اور اس کا آنچل ہل رہا ہے, وہ آشیرواد اپنی بیٹی کو دے رہی ہے. تو اس طرح کہتے ہوئے کوی کہتے ہیں کہ دور ویاپارک نگر سے پریم کی پریے بھومی اپجاؤ ادھک ہے, یعنی یہ جو پرکرتی کا جو یہ پورا واتاورن ہے, یہاں کسی بھی طرح کی ویوسائکتا نہیں ہے, کسی بھی طرح کا سوارتھ نہیں ہے, یہاں صرف پیار ہے, یہاں صرف پریم ہے, یہاں صرف سنیہ ہے. تو جو نگروں میں جس طرح کا ایک سوارتھ پورن ماحول رہتا ہے, اس سب سے دور اس گرامین پریویش میں یہاں لوگ تو لوگ, یہاں پر پرکرتی بھی پوری طرح سے پریم کو لٹا رہی ہے, سنیہ کو لٹا رہی ہے. یہاں جہاں دیکھو وہاں پر آپ کو سنیہ ہی سنیہ نظر آئے گا. تو اس طرح سے شکشارتھیوں, یہ ہمارا پہلا انش تھا جس کے بارے میں ہم نے چرچا کی, اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایک دوسرا درشیہ ہے جس میں آپ کو کچھ الگ ارتھ دیکھنے کو ملیں گے, جہاں پر کوی کہتے ہیں کہ اور پیروں کے تلے ہے ایک پوکھر, یعنی پاس میں ہی بالکل ایک پوکھر ہے, ایک چھوٹا سا تالاب ہے, اور ہوا چل رہی ہے, جب ہوا چلتی ہے تو اس میں بھی لہر اٹھتی ہیں, تو چھوٹی چھوٹی لہریں उस पोखर में उठ रही हैं। और यहाँ पर और क्या दृश्य है, नील तल में तो उगी है घास भूरी, यानी जो इस पोखर का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है वहाँ पर भूरे रंग की जो घास है वो दिख रही है, वो उगी हुई है। और इस शाम का ये दृश्य है, शाम के इस दृश्य में आप देखेंगे कि चांद की छवि जो है इस पानी में चमक रही है, और ये चमक इतनी ज़्यादा है कि देखने वाले की आंखों को क्या कहा गया है, यहाँ पर यहाँ कहा गया है आंख को है चकमकाता। चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया, चांद को कहा गया है, और उसकी चमक कितनी ज्यादा है, वो आंख को चकमका देती है, वो आंख को चौंधिया देती है। तो इन्होंने यहाँ पर चांद के बारे में कल्पना की है। तो ये एक बिल्कुल अलग दृश्य है। एक तरफ आपने दिन में सरसों का, चने का, अलसी का, एक स्वयंवर का दृश्य देखा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रात का दृश्य, एक पोखर का दृश्य। तो यहाँ कवि किस तरह से ये कल्पना कर रहा है। तो इस तरह आगे जब हम इस कविता में बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ और कल्पनाएं आती हैं। जैसे वो कहते हैं कि है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो एक तो है किनारे पर पड़े हुए पत्थर, और इसके अलावा क्या है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, यानी मछली की टोह में लगा हुआ है, उसके ध्यान में है। और बगुले की क्या विशेषता होती है, ऐसा लगता है जैसे वो आंखें बंद किए हुए बिल्कुल एक तक अपना एक अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो मछली के लिए टोह लगा रहा है, बहुत ध्यान लगाकर वो ये देख रहा है कि कौन सी मछली उसके पास आने वाली है और उसे वो पकड़ सकता है। तो जैसे ही कोई मछली पकड़ में आती है वो उसे जल्दी से अपने गले में डाल लेता है। और इसके अलावा एक और दृश्य है हमारे सामने कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो ये तीन जो दृश्य हैं, जो तीन कल्पनाएं हैं, उनके बारे में अगर आप अनुमान लगाएं कि ये पत्थर जिनके बारे में कहा गया कि पता नहीं कितने समय से लगातार ये पानी पी रहे हैं, तो पानी पीते हुए जो प्राणी हैं, आप इनके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पत्थरों को भी एक मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि ये निरंतर पानी में डूबे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे झुककर वो पानी पी रहे हैं, और बहुत समय से वो पानी में डूबे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है मानो उनकी प्यास शायद अभी भी बुझी नहीं है, जाने कब बुझेगी, यानी वो लगातार इसी रूप में इसी मुद्रा में ही वो रहेंगे। और जैसे मैंने बगुले के बारे में आपको बताया कि वो बहुत सचेत है, देखने वाले को लगता है कि वो ध्यानमग्न है, वो आंखें बंद किए हुए, लेकिन जैसे उसको कोई चंचल मछली, कोई भी बिल्कुल फुदकती हुई कोई मछली उसे तैरती हुई नजर आ जाती है छोटी सी, तो उसको एकदम से वो पकड़ लेता है और वो जल्दी से उसे खा जाता है। इसके अलावा एक ऐसी चालाक चिड़िया है जो उड़ती है और जल्दी से तालाब की जो सतह है ऊपर से वो देख लेती है, और तालाब की जो सतह है उस पर एकदम झपटती है اور اسے جیسے ہی کوئی سفید مچھلی ہے اسے پکڑتی ہے وہ اور اپنی پیلی چونچ میں دبا کر وہ آکاش میں اڑ جاتی ہے. تو یہ جتنے یہ جو درشیہ ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو کویتا کا پہلا حصہ ہے اس میں آپ کو سب کچھ اچھا اچھا لگے گا. اچھے خوبصورت کھیت ہیں, لہلا آ رہے ہیں, ہرے بھرے ہیں, چنے کے کھیت ہیں, السی کے کھیت ہیں, اور ہم نے ان کی کلپنا بھی دیکھی کہ کس طرح سے کبھی ان کے روپ کی کلپنا کر رہا ہے اور ان کا بھی مانویکرن کر رہا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے حصے میں تھوڑی سی گمبھیر باتیں کہی گئی ہیں جو شاید آپ کو بھی ایسا لگے کہ ان کا ارتھ کیا ہو سکتا ہے, کیا کوئی اور چھپا ہوا ارتھ اس میں ہو سکتا ہے. آپ اس کی بھی آپ کلپنا کر سکتے ہیں یا آپ اس پر بھی آپ انومان لگانے کا پریاس آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو بگلا ہے وہ کس بات کا پرتیک ہے. وہ سماج میں جو بہت ہی چالاک لوگ, بہت ہی دھورت لوگ, دھوکے باز لوگ جو ہوتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں کہ معصوم لوگوں کا شوشن کرتے ہیں, انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور ان سے پیسہ اینٹ لیتے ہیں یا اور کسی طرح سے ان کا شوشن کرتے ہیں. تو یہاں پر جو بگلا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کے کپٹی لوگوں کی کلپنا کوی نے کی ہے. اور ساتھ میں جو چتر چڑیا ہے وہ بھی اسی روپ میں ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے کہ جو بہت چالاک ہے, بہت تیز ہے اور اسے اور موقع پرست ہے, اور وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اپنا مطلب سادھ لیتی ہے. تو اس طرح سے یہاں پر یہ درشیہ دکھایا گیا ہے. تو آپ شکشارتیوں یہ آپ کو سپشٹ ہو گیا ہے کہ اس کویتا میں دو درشیہ مکھیہ روپ سے ہیں. پہلا درشیہ ہمارا کھیت کا ہے اور جس میں چنا, السی اور سرسوں ہیں, سب لوگ پیار سے بھرے ہوئے ہیں, شادی کا سویمبر کا درشیہ ہے. اور دوسرے درشیہ میں تالاب ہے جس میں بگلا ہے, جس میں چڑیا ہے اور پانی پیتے ہوئے پتھر ہیں. اور یہ جو ہیں یہ جو اپادان ہیں یہ سب شوشک ہیں, یہ سب کپٹی لوگوں کے پرتیک ہیں. تو اس طرح سے یہ کویتا گاؤں کی پرشٹھ بھومی پر آدھارت ہے جس میں پریم بھی ہے, سنیہ بھی ہے, سندرتا بھی ہے, موہکتا بھی ہے. اور دوسری طرف جو اس کے انتم درشیہ میں کچھ اس طرح کے کپٹی بگلا بھکت لوگوں کا بھی ذکر ہے جو موقع پرست ہیں, جو اوسروادی ہیں, جو شوشک ہیں اور جن میں کسی بھی طرح کی سمویدنا نہیں ہے. تو شکشارتھیوں اور شروتاؤں یہ ہماری کویتا تھی. اس کویتا میں اگر ہم بھاو سوندر کی بات کریں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پرکرتی سے بھرا ہوا سوندر ہے, گاؤں کا پریویش ہے, بہت ہی موہک واتاورن ہے. اگر آپ اسے آپ سے کہا جائے کہ اس کویتا کو پڑھ کر آپ ایک کلپنا کیجیے گاؤں کے پریویش کی اور آپ اسی طرح کی کوئی اپنی کلپنا سے آپ ایک چتر کھینچیے تو مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ خود بھی ایک نئی کلپنا آپ گڑھ سکیں گے. کیونکہ یہ جس طرح سے اس کویتا کا بھاو ہے اس کے انوسار آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح سے آپ کو کن کن بھاوناؤں سے انپریرت ہونا ہے, کون سی بھاوناؤں ہیں جو آپ میں سکاراتمکتا جگاتی ہیں, جو آپ میں اسنے سمویدنشیلتا جو ہے اسے پروتساہت کرتی ہیں. तो ये हम मुख्य रूप से हमारे कह सकते हैं कि इस कविता का भाव सौंदर्य होगा। और इस कविता का जो पूरा वातावरण है, आप देखेंगे कि बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण कवि ने इन सारे दृश्यों का किया है। जिस तरह से उन्होंने कल्पना की है कि भूरी घास भी है, चांद का प्रतिबिंब भी है, और पत्थर लगातार बहुत समय से पानी पी रहे हैं, और वहाँ पर बगुला भी है और चिड़िया है, उसकी जो अलग अलग जो उसकी क्रियाकलाप हैं वो किस तरह से हमारे समाज के किस वर्ग के किस तरह के लोगों किस तरह की आदत वाले लोगों के बारे में यहाँ पर कल्पना करते हैं। ऐसा लग रहा है मान लो उन्हें बिल्कुल मूर्तमान उन्हें वहाँ पर कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ भाषा सौंदर्य की बात करें तो भाषा सौंदर्य में आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि यहाँ जो भाषा है हमारी बहुत सहज है, बहुत ही सरल है। सबसे अधिक कौन सा अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या आप बता पाएंगे? इस कविता में हर स्थान पर आपको मानवीकरण अलंकार मिलता है। जैसे आप चने को देखेंगे कि उसके जो गुलाबी फूल हैं तो उसके बिल्कुल मानव की तरह कार्य करते हुए चने के पौधे को दिखाया गया है, उसकी कल्पना की गई है। तो मानवों की तरह जब क्रियाकलाप करते हुए हम प्राकृतिक उपादानों को हम दिखाते हैं तो हम उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चने को दूल्हा बनाया हुआ है, अलसी को हठीली बताया है, उसकी कमर को लचीली बताया है, और इस तरह से उन्होंने अलसी को भी मानव के रूप में दिखाया है। और ऐसा लग रहा है, कल्पना क्या की गई है कि अलसी कहती है कि जो मुझे छुए उसे मैं अपना हृदय दे दूं। तो ये तो मानवों में ही संभव है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। और इसी तरह सरसों का जब जिक्र हो रहा है तो उसे एक सयानी लड़की के बारे की तरह दिखाया गया है कि जिसके हाथ पीले होने वाले हैं और वो मंडप में पधार चुकी है, शादी हो रही है उसकी। तो उसे भी यहाँ भी मानवीकरण का ही उदाहरण आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो फागुन है वो मास का महीना जो है वो फाग गा रहा है, होली पर गाए जाने वाले जो गीत हैं वो गा रहा है मानवों की तरह। पत्थर है जो कई वर्षों से झुके हुए पानी पी रहे हैं, जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। तो जीवित मानवों की तरह उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, उनकी कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि कुछ दृश्यों में जो अंतिम दृश्य हैं वहां पर प्रतीक भी कल्पित किए गए हैं, प्रतीकों का भी आरोपण यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मछली है जो जिसे बगुला भी खा रहा है, जिसे चिड़िया भी अपने चोंच में दबा कर भागे जा रही है। तो सामान्य मानव के रूप में इसे प्रतिबिंबित किया गया है, इसे प्रतीक के रूप में यहाँ पर बताया गया है। और बगुले को अगर आप देखेंगे तो जो बगुला है वो कपटी और धूर्त, वैसे भी आप देखेंगे कि जब भी कहते हैं हम कि बड़ा बगुला भगत है तो उससे भी पता चलता है कि कितना चालाक है, कितना अवसरवादी है। तो यहाँ पर बगुले की भी कल्पना एक सफेद पोश व्यक्ति जो एक बहुत ही धूर्त कपटी मतलबी व्यक्ति के रूप में यहाँ पर की गई है, और उसे भी इस रूप में यहाँ पर प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पर जो चिड़िया है, चिड़िया को भी इसी तरह से यहाँ प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ विशेष शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो सामान्य खड़ी बोली में कम इस्तेमाल होते हैं, जैसे ठिगना हम कम इसका प्रयोग करते हैं, मुरैठा, ब्याह, हठीली, लचीली, तो इन शब्दों का यहाँ पर, ये जो बोलचाल के जो ये शब्द हैं जो हमारी सुसंस्कृत भाषा में कम इस्तेमाल होते हैं, हमारी घर पर बोले जाने वाली भाषा में शायद इनका इस्तेमाल होता है, तो वहाँ यहाँ पर इस कविता में भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाथ पीले करना जैसे मुहावरे का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, मैं समझती हूँ कि इस कविता पर हमने बहुत ही विस्तार से हमने बात की है और हमने इसे समझने का प्रयास किया है। इसमें कल्पना के जितने चित्र हैं उनकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है यहाँ पर इस चर्चा के दौरान, और इस कविता का जो भावगत सौंदर्य था उसके बारे में, और साथ ही इसका जो भाषागत सौंदर्य था इस पर भी हमने बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। तो हम एक बार शिक्षार्थियों ये दोहरा लेते हैं कि हमने इस कविता में हमने ग्रामीण परिवेश का जो प्रकृति चित्रण है उसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से जो चित्रण किया गया है हमने उस पर चर्चा की है। इस कविता में चने के खेत की एक मेड़ पर कवि बैठा हुआ है और उसने हरे चने का जो गुलाबी फूल है उस गुलाबी फूल को उसने इस तरह से कल्पना करके उसने चित्रित किया है कि वो पगड़ी बांधे हुए है, और जो सरसों हैं वो पीले रंग की है और वो पीले रंग की सरसों फूली हुई है, खिली हुई है, और ऐसा लग रहा है मानो वो एक युवती है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वो स्वयंवर के ब्याह के मंडप में वो पधारी है और जो प्रकृति है उसका आंचल हिल रहा है। अलसी है वो दुबली पतली है, वो हठीली है, और इस तरह से जो उसके नीले जो फूल हैं वो उसके सिर पर हैं और ऐसा लग रहा है मान लो वो औरों को वो ये कहकर प्रोत्साहित कर रही है कि जो इसे छू ले मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी। तो इस तरह से प्रकृति का पूरा दृश्य स्नेह से ममता से भरा हुआ है। ऐसे माहौल में जो फागुन माह है वो फाग पर गाए जाने वाले गीत गा रहा है, और यहाँ आप देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। गांव का जो तालाब है उसे उसका चित्रण भी यहाँ किया गया है। कई वर्षों से जो उसके किनारे पर डूबे हुए पत्थर हैं वो लगातार पानी पी रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, और नीले तल का जो पोखर है वो बहुत सुंदर, उसमें लहरियां हवा चलने से लहरियां उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, और उसमें मछली है, बगुला है, और वहां पर एक काले माथ वाली चिड़िया भी है। तो इस तरह से जो सफेद बगुला है उसे ढोंगी दिखाकर यहाँ पर कटाक्ष भी किया गया है। इन सब में जो मछली है वो आम आदमी की प्रतीक है, जो जो धूर्त लोगों के हाथों शोषण का शिकार होती है। तो ये शिक्षार्थियों हमारी कविता थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चर्चा के दौरान जो भी आपके मन में संभावित प्रश्न रहे होंगे मैंने यथासंभव उन्हें उनका उत्तर देने का प्रयास किया होगा, और अब जब आप इस कविता को दोबारा पढ़ेंगे, इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको जहाँ कहीं भी पहले समस्या हो रही होगी अब आपको वो समस्या नहीं होगी, और आपको इस पाठ को पढ़ने में आनंद भी आएगा, और क्योंकि आपको अभी अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और इससे संबंधित जो हमारे पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं आप उनका भी बखूबी उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी कल्पना का भी सहारा लेना है, सिर्फ किताब में लिखी हुई जो हमारी कविता है सिर्फ उसका ही नहीं, आपको अपनी कल्पना के घोड़े भी आपको दौड़ाने हैं और आपको भी अपने किसी अनुभव के आधार पर भी आप इस तरह का चित्रण कर सकते हैं, तभी आप इस कविता का विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप में उस तरह की कह सकते हैं अभिवृत्ति मिलती है, एप्टीट्यूड अगर आप में है कल्पना करने का, तभी आप इस कवि की कल्पना को बखूबी समझ पाएंगे और उसे अपने उत्तरों में या अगर आप कहीं किसी और के सामने भी इस कविता को व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि मैंने ये कविता पढ़ी है, तो भी आप इसे बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे। इस कविता पर आधारित हमारी चर्चा पूरी हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा वो हमारे अगले पाठ पर आधारित होगा और ये पाठ है अखबार की दुनिया। तो अखबार जो हम सभी के जीवन में एक अभिन्न हिस्सा है, हम सुबह उठते ही बहुत बेचैन होते हैं कि कल की क्या खबर थी, हमें जल्दी से पता होना चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त है और इतने अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है कि हमें लगातार बहुत सारी समाचार मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक जो छपा हुआ वो जो कई पृष्ठों का जो ये समाचार पत्र है, इसका प्रलोभन कहीं भी कम नहीं होता है। तो अगले कार्यक्रम में हम इसी पाठ पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही रोचक पाठ होने वाला है जिसमें आप अखबार की दुनिया के बहुत सारे अनछुए पहलुओं के बारे में भी आप जानेंगे कि किस किस तरह के इसमें समाचार होते हैं और किस किस तरह से इनका चयन किया जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस पाठ को पहले ही पढ़कर रखें ताकि आपको जहां भी कहीं दिक्कत होती हो, हमारी चर्चा के दौरान उस पर बात होगी तो आपको ये पाठ पढ़ने में और अधिक सुविधा मिलेगी।